नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जीएसटी अधिकारियों ने बीते दो साल में 55,575 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी है और इन मामलों में 700 से अधिक लोगों को सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय के अधिकारियों ने 22,300 से अधिक फर्जी जीएसटी पहचान संख्या का पता लगाया। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना और फर्जी बिल जारी करके इनपुट कर क्रेडिट का लाभ लेने और इस तरह जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार ने 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाया था। एक अधिकारी ने बताया कि इस विशेष अभियान को 2 वर्ष हुए हैं और इस दौरान 55,575 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता चला। 719 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 20 पेशेवर सीए और सीएस हैं। इस अवधि में जीएसटी में 3,050 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक जमा करवाया गया। आतिथ्य सेवा प्रदाता कोर्टयार्ड बाय मैरियट ने अपने विस्तार योजना को तेज करते हुए तिरुचिरापल्ली में नया होटल खोला। तिरुचिरापल्ली में होटल खोलने वाला ये पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और ये देश में उसका 24वां होटल होगा। मैरियट इंटरनेशनल में दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष राजू एलेक्स ने कहा, इस संपत्ति का कोर्टयार्ड बाय मैरियट में स्वागत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। ये देश में हमारा 24वां होटल और तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य ब्रांड का पहला केंद्र है। उन्होंने कहा कि तिरुचिरापल्ली में कंपनी का ये नया होटल देश में तेज विस्तार की उसकी यात्रा में एक अहम पड़ाव है और कंपनी नए एवं संभावनाओं से भरे बाजारों में उतर रही है। बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के पद से चंदा कोचर की बर्खास्त की प्रथम दृष्टया वैध थी। इसके साथ ही अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए उनके अंतरिम आवेदन को भी खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर आई छागला की एक एकल पीठ ने कोचर को ये निर्देश दिया कि वह 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करे। अदालत ने कोचर को 6 महीने के भीतर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें अलग शेयरों का कोई सौदा किया गया हो तो उस बारे में बताना होगा। न्यायमूर्ति छागला ने कोचर द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया और कहा, मैंने बर्खास्तगी को वैध माना है। कोचर ने अपने आवेदन में उन लाभों की मांग भी की जो बैंक द्वारा उनकी समय पूर्व सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने के बाद बिना शर्त मिले थे। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर सकता। उन्हें बिना शर्त के दिए गए लाभों में कर्मचारी स्टॉक विकल्प शामिल है, जिन्हें 2028 तक भुनाया जा सकता था। आईसीआईसीआई बैंक ने भी एक आवेदन दायर कर कहा कि कोचर को शेयरों का सौदा नहीं करने का निर्देश दिया जाए। नव गठित भारत अमेरिका सीईओ फोरम ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने संयुक्त रूप से की। बैठक में गोयल ने कहा कि उभरती प्रौद्योगिकियों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और छोटे व्यवसायों के जुझारूपन तथा टिकाऊपन को बढ़ावा देने की परस्पर दिलचस्पी से भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, ये फोरम संवाद के लिहाज से तथा दोनों अर्थव्यवस्थाओं के साझा हित के खातिर करीबी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी एक प्रभावी मंच होगा। फोरम के सह अध्यक्ष हैं जेम्स टाइकलेट और एन चंद्रशेखरन। इसमें अनेक अग्रणी भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा दिसंबर 2014 में पुनर्गठन के बाद ये छठी बार है जब फोरम का आयोजन किया गया है। गोदरेज एंड बाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को बम्बई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई स्थित उसकी भूमि के अधिग्रहण की जो कार्रवाई शुरू की है वह अवैध है तथा गैरकानूनी है। कंपनी ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड द्वारा उस पर लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि कंपनी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बेवजह अवरोध खड़े कर रही है, जिससे परियोजना में विलंब हो रहा है। उसने कहा कि 264 करोड़ रुपए की जो अंतिम क्षतिपूर्ति राशि दी गई है वह तो भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रस्तावित 572 करोड़ रुपए का महज एक हिस्सा है, जिसकी कंपनी को आरंभिक तौर पर पेशकश की गई थी। कंपनी की याचिका के जवाब में सरकार और NHSRCL ने जो हलफनामे दायर किए उसके जवाब में कंपनी ने बृहस्पतिवार को हलफनामा दायर किया। कंपनी ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार के 15 सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी जो बुलेट ट्रेन परियोजना की खातिर भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुआवजा देने से संबंधित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को निवेश के लिए पूरी तरह अनुकूल बताते हुए निवेशकों से यहां अधिक से अधिक निवेश करने का आह्वान किया। गहलोत बृहस्पतिवार को यहां स्टोन उद्योग की प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान में वो सारी सुविधाएं हैं, माहौल है, यहां श्रमिक अशांति नहीं है और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान सब तरह से निवेश के लिए मुफीद है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।